स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
छू ले मुझे सामर्थ से कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए, भर दे मुझे अभिषेक से, चलता रहूं तेरी राह पे। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ।
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको फिर से दिया है कि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन दूर में रह करके भी रेडियो के माध्यम से एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। आज जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से फिर से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, बोलने और बातचीत करने पाए, ताकि हम अपने विश्वास में बढ़ने पाए, आपको महिमा देने पाए। हमारी प्रार्थना है कि आज के वचन पर आप अपने आशीष दें और आप हम सब की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि यूहन्ना ने देखा कि समुद्र से एक पशु निकला जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यह पशु बड़ा विचित्र था। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 2 पद में। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। सच में यह तो बड़ा ही विचित्र पशु था। न तो पानी में, न ही पृथ्वी पर और न ही हवा में ऐसा पशु देखा गया था। वह वास्तव में एक दर्शनीय पशु था। यूहन्ना ने ध्यान से देखा कि वह एक मिला जुला पशु था। अब हम ख्रिस्त विरोधी के बारे में निश्चित तथ्य निर्धारित कर सकते हैं। इसमें दानियेल नबी की पुस्तक 7 अध्याय के पशुओं के लक्षण समाहित हैं। दानियेल अध्याय 7 को ध्यान में रखना हमारे लिए सहायक होगा। पहली बात हम यहां पर देखते हैं, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। उस पशु का बाहरी रूप चीते के समान था। दानियेल की पुस्तक 7 अध्याय के 6 पद में भी लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। यह यूनानी साम्राज्य था। यूनान अपनी बुद्धि और कला एवं विज्ञान की उन्नति के लिए जाना जाता था। दर्शन विद्या, वस्तुकला और अतुल्य साहित्य के लिए भी यूनान का बड़ा नाम था। यूनानी भाषा भी एक अति उत्तम भाषा है। पशु के राज में वह सब बाहरी संस्कृति होगी जो यूनान की महिमा और गरिमा थी। दूसरा है, उसके पांव भालू के से थे। इससे हमें दानियेल के दर्शन के दूसरे पशु का स्मरण आता है। दानियेल की पुस्तक 7 अध्याय के 5 पद में लिखा है, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीच के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। यह मादी फारसियों का राज्य था जो वैभव के लिए जाना जाता था। वह पृथ्वी पर एक दैत्य के समान चलता था। पशु के राज्य में मादी फारसी राज्य का वैभव और धन धान्य परिपूर्णता में होगा। तीसरे प्रकार के जानवर के बारे देखते हैं, और मुंह सिंह का सा था। इससे हमें दानियेल के दर्शन के पहले पशु का स्मरण आता है। दानियेल के पुस्तक 7 अध्याय के 4 पद में लिखा है, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। यह बाबुल का निरंकुश शासन है। नबूकदनेस्सर ने अपने ज्योतिषियों की हत्या का आदेश दिया और आगे चलकर उन 3 इब्रानी युवकों को आग के भट्ठे में डालने का आदेश दिया। तो उसकी आज्ञा पर आपत्ति उठाने वाला कोई नहीं था। वह मूर्ति का सोने का सिर था। वह एक निरंकुश शासक था। यद्यपि पाप का पुरुष दानियेल के स्वप्न की मूरत के पांव की एक उंगली है जो आधी लोहे और आधी मिट्टी की है, वह नबूकदनेस्सर के समान निरंकुश शासक होगा। संसार का यह अंतिम निरंकुश शासक शैतान के अधिकार के अधीन अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा। उसकी शक्ति का स्रोत शैतान है। वही उसे उठाता है, सामर्थ प्रदान करता है और क्षमता से भर देता है कि वह दुष्टता का निरंकुश काम करे। वह शैतान के देह धारण के सबसे निकट है, जैसा धर्मशास्त्र में व्यक्त है। लूका कहता है कि यहूदा में शैतान समा गया था। लूकार्ची सुसमाचार 22 अध्याय उसके 3 पद में प्रभु यीशु ने मतिर्ची सुसमाचार 16 अध्याय के 23 पद में पत्रस से बात करते समय यही शब्द काम में लिए थे। क्या पाप का यह पुरुष शैतान का देह धारण है? मेरे विचार में हम कह सकते हैं कि वह है, निश्चय ही शैतान उसमें समाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पौलुस लिखता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे वन पशु घातक घाव। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। यह पद और अध्याय 17 का पद 8 ने अनेकों को इस भ्रम में डाला है कि शैतान ने वास्तव में पशु को मृतकों में से जीवित किया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले तो था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। मेरे प्रियो, इन दो पदों के कारण अनेकों ने यह विचार तैयार किया कि शैतान ने पशु को मृतकों में से जिलाया है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान के पास मृतक को जीवित करने का अधिकार नहीं है, केवल प्रभु यीशु ही मृतकों को जिला सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 21 पद 25 पद और 28 से 29 पद में हम देखते हैं, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। केवल प्रभु यीशु ही मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है, शैतान नहीं। अतः मैं यह मानता हूं कि यह पुनर्स्थापन झूठा और नकली पुनरुत्थान है। वे जो यह मानते हैं कि शैतान पशु को पुनर्जीवित करता है, वे पशु को मनुष्य कहते हैं। आरंभिक कलीसिया में अधिकतर यही माना जाता था और इसमें मतभेद नहीं था। पशु की पहचान में वे परस्पर सहमत नहीं थे। कुछ का मानना था कि वह यहूदा इस्करियोती है, कुछ उसे नीरो राजा कहते थे। अगस्तीन ने लिखा है, इसका क्या अर्थ है, अपराध का भेद पहले से ही सक्रिय है, कुछ उसे रोमी सम्राट कहते हैं। और इस कारण पौलुस ने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, जबकि उसने सदा यही आशा रखी थी कि उसने जो लिखा है वह नीरो के लिए ही समझा जाए, जिसके काम ख्रिस्त विरोधी के समान ही थे। अतः कुछ लोगों को शक था कि वह ख्रिस्त विरोधी के अवतार में पुनः जन्म लेगा। कुछ का यह भी मानना है कि पशु रोमी साम्राज्य का प्रतीक है और साम्राज्य सरकार जिसके अधीन रोम हुआ है विस्मयकारी रूप से पुनः स्थापित की जाएगी। मैं मानता हूं कि ऐसा ही होगा, परंतु मैं यह नहीं सोचता कि वह पुनरुत्थान होगा, क्योंकि वह मरा नहीं था, रोम बिखर गया था। ख्रिस्त विरोधी इसे पुनः स्थापित करेगा। यह एक अद्भुत कार्य होगा। रोम आज के यूरोप राष्ट्रों में जीवित है और मेरे विचार में इन दोनों दृष्टिकोणों में कुछ तो सराहनीय है, जबकि दोनों दृष्टिकोणों में के प्रति गंभीर आपत्तियां उठाई गई हैं। किसी दुष्ट का पुनरुत्थान श्वेत सिंहासन के न्याय से पूर्व नहीं हो सकता है। उस समय भी केवल प्रभु यीशु ही मृतकों को पुनर्जीवित करेगा। ये पुनरुत्थित मनुष्य महान श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे। आप देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में। मेरे मित्रों, हम योना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 28 और 29 पद में देख चुके हैं, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। केवल प्रभु यीशु ही मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है, चाहे वे उद्धार प्राप्त हों या उद्धार से रहित हों। शैतान में सामर्थ नहीं कि मृतक में जान डाले। वह जीवन दाता नहीं है, वह इबलिश है, विनाशक है, मृत्यु का व्यापारी है। रोमी साम्राज्य नई जान पाएगा और संगठित होगा, जो एक आश्चर्य की बात होगी। उसका अगुआ पशु विश्व शासक एवं निरंकुश शासक होगा। तथापि पद 3 अधिक उचित जानकारी की मांग करती है। मेरे मित्रों, मेरा मानना है कि पशु एक ऐसा मनुष्य होगा जो नकली और बनावटी पुनरुत्थान का स्वांग रचेगा। यह महाक्लेश का एक महान भ्रम एवं धोखा होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें एक बड़ी झूठ पर विश्वास करने के लिए रख देगा, और यह एक बहुत बड़ा झूठ होगा। वे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु वे ख्रिस्त विरोधी के झूठे पुनरुत्थान को स्वीकार करेंगे। आगे लिखा है, उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। यह प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान की निंदाजनक नकल दर्शाता है। उस युग में चुनौती यह होगी, प्रभु यीशु ने ऐसा क्या किया जो ख्रिस्त विरोधी न कर पाया हो? प्रभु यीशु का पुनरुत्थान कोई नहीं दोहरा सकता, नकल अवश्य कर सकता है, परंतु ख्रिस्त विरोधी ऐसी नकल करेगा कि संसार मूर्ख बन जाएगा। यह एक बहुत बड़ा झूठ होगा। विश्वासी कहते हैं मसीह जी उठा है। उस युग में अविश्वासियों का कहना होगा ख्रिस्त विरोधी भी तो फिर से जी उठा है। रोमी साम्राज्य एक झूठे पुनरुत्थान को दिखाने वाले के निर्दयी हाथों के नीचे फिर अस्तित्व में आ जाएगा, और आसानी से धोखा खाने वाला यह संसार अंततः उनकी नकल से मूर्ख बन जाएगा। अब हम ख्रिस्त विरोधी का एक मिला जुला चित्रण देखते हैं, श्वेत घोड़े का सवार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय में हमने देखा था, संसार में झूठी शांति लाया था। मनुष्य के लिखित इतिहास में 1500 युद्ध हुए हैं और लगभग 800 शांति के समझौतों पर मनुष्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तथापि संपूर्ण इतिहास में मनुष्य ने केवल 200 से 300 वर्ष की ही सच्ची शांति का आनंद लिया है। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, इससे युग की आत्मविरोधी बात यह है कि यह शांतिवाद का युग है, शांति का युग नहीं। मेरे प्रियो, ख्रिस्त विरोधी संसार में शांति लाने का स्वांग रचेगा। हम शांति चाहने वाले नहीं, युद्ध प्रिय लोग हैं। एक अंग्रेज इतिहासकार आर्नोल्ड टोयनवी ने 1953 में कहा था, मनुष्य पर अधिकाधिक प्राण घातक हथियार थोपने के कारण और साथ ही संसार को आर्थिक तकनीकी रूप से परस्पर निर्भर रखने के कारण मनुष्य निराशा के ऐसे ऊंचे स्तर पर आ गया है कि हम संसार में एकता एवं शांति स्थापित करने वाले किसी भी केसर को देवता बनाने के लिए तैयार हैं। ख्रिस्त विरोधी जब आएगा तो उसे संसार को बस यही देना होगा। वह कहेगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, और लोग कहेंगे हालेलुया, और उसे गद्दी पर बैठा देंगे। संसार ख्रिस्त विरोधी को अधिकार के पद पर बैठा देगा। किसी बिशप ने यह एक अति उत्तम बात कही, ख्रिस्त विरोधी एक महान मानववादी के झूठे भेष में आएगा। वह शांति, समृद्धि और बहुतायत की बातें करेगा, जो हमें परमेश्वर के पास लाने का साधन नहीं, स्वयं में ही अंत होगी। वह मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा हमारे विवेक को दोष मुक्त करेगा, और वह मनुष्यों को लज्जित करेगा यदि उनके साथी कहें कि वे विकसित विचारों और मुक्त विचारों के नहीं हैं। वह एक झूठ फैलाएगा कि मनुष्य तब तक नहीं उन्नत होगा जब तक समाज उन्नति नहीं करे। मैं इस विषय की बात से 100% सहमत हूं। आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे वन पशु पूजा का स्रोत। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:4 में लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। यह शैतान का महान सौभाग्य होगा। वह तो चाहता ही है कि उसकी उपासना की जाए, और उस युग में संपूर्ण संसार उसकी उपासना करेगा। मेरे मित्रों, यदि पवित्र आत्मा इस संसार पर से अपना हाथ उठा ले और आप पर और मुझ पर से भी उठा ले, तो मुझे खेद है कि हम में से अनेक धर्म से पद भ्रष्ट होने के स्थान पर होंगे, और जब ख्रिस्त विरोधी प्रकट हो तब हम एक वफादार कुत्ते के समान उसके पीछे हो लेंगे। लोगों ने यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है। सच्चे परमेश्वर की आराधना के विरुद्ध कैसी विडंबना है। वे कहते हैं, देखो हम बाइबल के परमेश्वर से भी अधिक अद्भुत प्राणी की पूजा करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13:5 में लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। यहां एकमात्र शुभ समाचार यह है कि ख्रिस्त विरोधी का राज केवल 42 महीने का ही होगा, अर्थात 3.5 वर्ष का। लिखा है, बड़े बोल बोलने, अर्थात वह बकवादी मनुष्य होगा। उसके विषय दानियल भी यही कहता है, वह वास्तव में बड़ी बड़ी बातें करेगा, वह किसी भी बात की प्रतिज्ञा करेगा। आज रेडियो और टीवी पर किसी भी या किसी की भी बातें सुनने में आपको अति सावधान होना होगा। हम जो कुछ सुनते हैं उसे परखना हमारे लिए आवश्यक है। ख्रिस्त विरोधी चमत्कारी होगा। वह प्रभु यीशु का इनकार करने वाले इस संसार का अनुग्रह पात्र बनने में बातों का धनी होगा। हम आगे देखते हैं वन पशु परमेश्वर को चुनौती। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:6 में लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। यह एक भयानक सीमा है जहां तक पशु परमेश्वर की निंदा करने से पीछे नहीं हटता। वह स्वर्ग में उपस्थित प्रभु यीशु और उसकी कलीसिया के विरुद्ध है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कलीसिया पृथ्वी पर नहीं है। मैं समझ नहीं पाता कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करने वाले कैसे सोचते हैं कि कलीसिया महाक्लेश के समय पृथ्वी पर होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:7-8 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, उससे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ध्यान दीजिए, लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। यद्यपि कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं होगी, महाक्लेश में भक्त जन अवश्य होंगे। यह निर्दयी पशु उन्हें सताएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहूदी और अन्य जाति में से अनेक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के निमित्त शहीद होंगे। आगे लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। एक प्रसिद्ध प्रचारक स्पर्जन कहा करते थे, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे इस पृथ्वी पर आने के पूर्व ही मेरा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर मेरे यहां आने तक रुकता तो मेरा नाम कभी नहीं चुनता। यह सब भक्त जनों के विषय में सच ही है। कलीसिया के हो या महाक्लेश के, दोनों युगों में यह सच है। मेरे मित्रों, संसार के इतिहास में यह सबसे अधिक अंधकार का युग होगा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कलीसिया यहां नहीं होगी। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि मैं महाक्लेश में नहीं रहूंगा। मैं ख्रिस्त विरोधी के राज्य में नहीं रहूंगा। मैं मसीह का हूं, इसलिए मैं ख्रिस्त विरोध के नहीं, मसीह के आगमन की बाट जोह रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप भी मसीह के आगमन की बाट जोहें, क्योंकि वही आपको सच्चा उद्धार और शांति दे सकता है। ख्रिस्त विरोधी आपके जीवन में कठिनाइयों को लाएगा। मेरे मित्रों, अभी से आप तैयार हो जाएं कि आप किसका आगमन देखना चाहते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने ख्रिस्त विरोधी और सच्चे प्रभु के बारे में जाना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से, दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी आराधना दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी आराधना। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले